ओम शांति। आप सभी को शुभ कामनाएं, शांति प्रेम आनंद की। आज हम सभी जानते हैं कि इस जीवन में हम सभी को अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से तरह तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं। उन सभी चैलेंजेस का सामना हम सभी को करना पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो परमात्मा को याद करता है, मेडिटेशन करता है, चाहे अपने कार्य क्षेत्र पर रहता है। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और अभी जो रिसेंट स्टडीज आई हैं, उनमें ये पता लगा है कि व्यक्ति को चैलेंजेस आना अच्छी निशानी है। जो चैलेंजेस हम सभी के सामने जीवन में आते हैं और उसका हम अच्छी तरह से सामना करते हैं, कोप करते हैं, तो व्यक्ति का अपना सिस्टम बढ़ता है, या ये कहा जाए उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो हम किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकते हैं। इसी तरह से जब हम माइंड का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर देते हैं तो हम किसी भी चैलेंजेस का सामना अच्छी रीति कर सकते हैं। इसीलिए वेबस्टर डिक्शनरी का मीनिंग क्राइसिस, हम सभी कहते हैं मेरे सामने क्राइसिस आया। तो अगर उस डिक्शनरी मीनिंग में भी लें क्राइसिस का, तो क्राइसिस का भी दो मीनिंग है। एक अर्थ होता है क्राइसिस का डेंजर, और दूसरा अर्थ होता है क्राइसिस का अपॉर्चुनिटी। अब यह व्यक्ति के खुद के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस सिचुएशन को डेंजर के रूप में ले या उस सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी के रूप में ले। और यहां आप जो सीख रहे हैं, बेसिकली जो अप्रोच सीख रहे हैं, वो यही सीख रहे हैं कि हमें चैलेंजेस से, प्रॉब्लम से घबराना नहीं है। जो वर्ड स्ट्रेस है वो भी आजकल मैं कहता हूं चैलेंज। स्ट्रेस भी एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, स्ट्रेस भी एक अच्छा शब्द है, और उसको अगर हम अच्छी तरह समझ लेते हैं तो जीवन के सिचुएशन का सामना अच्छी रीति कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने सुना भी पहला गाना, गीत। क्या गीत था? हमें मन की शक्ति देना। क्योंकि आज के समय में अगर हम प्रार्थना भी करें भगवान से, भगवान मुझे प्रॉब्लम नहीं देना, टेंशन नहीं देना, तो शायद हमारी प्रेयर भी रिजेक्ट हो जाए। पर अगर हम भगवान से प्रार्थना करें इतनी शक्ति देना, इतनी समझ देना, तो शायद भगवान हमारी प्रार्थना एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि जो शब्द निकाला स्ट्रेस, उसके फादर थे डॉक्टर हैंसले। डॉक्टर हैंसले से भी किसी ने पूछा, सर मेरे जीवन में एक व्यक्ति उनके पास आया और उसने कहा मुझे एक ऐसी मेथड बता दो कि जीवन में कभी प्रॉब्लम ना आए, टेंशन ना आए। तो डॉक्टर हैंसले उसको अगले दिन शमशान में ले गए, बोला यहां आकर सो जा, वहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां रहना है तो सिचुएशंस आएंगी। तो इसका अर्थ है कि जीवन हम सभी का एक ऐसा गेम है जिसको हम अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो अच्छी तरह प्ले कर सके। क्योंकि 21वीं सदी है अनसर्टेन, 21वीं सदी है अननोन, किसको कहां क्या हो जाए पता नहीं। इस अनसर्टेन सिचुएशन में हमारे सामने केवल हमारा हथियार जो है वो है हमारा माइंड। इसीलिए मैंने पहला कहा मन की शक्ति देना। हमारे को परमात्मा ने कोई हथियार नहीं दिया जन्म से, हथियार केवल दिया जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कहा, यहां जब आए थे, जब प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने कहा सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास है उसका इग्नाइटेड माइंड। इग्नाइटेड माइंड इज द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन द अर्थ। अगर ये हमारा हथियार अच्छी तरह काम करता है तो हम शूट कर सकते हैं। अगर हमारा ये हथियार ठीक काम नहीं करेगा तो थिंकिंग और डूइंग में प्रॉब्लम आएगा, सोच और कार्य में प्रॉब्लम आएगा, डिसीशन ठीक से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सिचुएशन के समय हमारे हाथ में हमारा डिसीशन पावर है। अगर मेरा डिसीशन पावर ठीक से लेता हूं, क्विक लेता हूं, तो प्रॉब्लम से मैं बच सकता। तो उसी पर मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। एक बहुत अच्छी रियल, एक बहुत ईमेल में काफी अच्छी स्टोरी पास हुई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो आज के व्यक्ति की हालत हो गई है। एक बहुत यंग एग्जीक्यूटिव वापस घर जा रहा है ऑफिस से पूरा कार्य करके। उसकी कार बहुत महंगी है, मैं भी जगुआर है, एक्सपेंसिव कार ड्राइव कर रहा है, गलियों में से गुजर रहा है, कई बच्चे खेल रहे हैं गलियों में। सडनली एक पत्थर उसकी कार के ऊपर गिरता है, चाहे छोटा पत्थर ले लें या बड़ा पत्थर। उस व्यक्ति को एकदम कार रोकता है, बाहर निकलता है, सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ दिखता है। इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा, मेरी इतनी महंगी कार और उसके ऊपर इसने पत्थर फेंका। तो उसको पकड़ लेता है, कहता तुझे ये नहीं मालूम कि ये इतनी एक्सपेंसिव कार है, तूने जो पत्थर फेंका उससे डैमेज हो सकता है, कितना डैमेज तेरे को देना पड़ेगा। वो बच्चा कहता है मेरा छोटा भाई वहां खड़ा है उस पे व्हील चेयर पे था, हैंडीकेप है, गिर पड़ा था, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि कोई कार रुके, मेरे को मदद करे, बच्चे को वापस व्हील चेयर पे सेट करे, पर कोई भी रुक नहीं रहा था, इसलिए मुझे पत्थर फेंकना पड़ा। इस मैसेज का उस व्यक्ति को बहुत असर आया। उसने घर जाकर अपनी कार को ठीक नहीं कराया। जब कभी भी उस कार के ऊपर वो डैमेज देखता था, उसको वो सीन याद आता था और ये मैसेज उसको मिला कि लाइफ में कभी भी इतना तेजी से मत भागो कि भगवान को पत्थर फेंक कर रोकना पड़े। आज हम सभी की हालत शायद कुछ ऐसी हो गई है कि कहां भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, उस भागदौड़ में हम अपने को समय ना दे पाते हैं और उसके कारण भगवान को बार बार सिग्नल्स देने पड़ते हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हेडेक हो, कुछ भी हो सकता है, वो इशारा देता है। अगर हम उन सिग्नल्स को पहले पहचान लेते हैं तो लाइफ के कई डैमेजेस से बच सकते हैं। और मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने को देखते हैं, अपने सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और लाइफ का सामना अच्छी तरह करते हैं। एक रियल स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर होंडा जापान में 1938 के करीब अपने स्कूल में जा रहे थे, टेक्निकल स्कूल था। मिस्टर होंडा ने सोचा कि मैं एक ऐसा पिस्टन रिंग बनाऊं जो टोयोटा लोगों को मैं दे सकूं। उसने बड़ी मेहनत से पिस्टन रिंग बनाई, उसकी वाइफ ने मदद की, उसके दोस्तों ने मदद की और पिस्टन रिंग बनाई। पिस्टन रिंग बनाकर वापस टोयोटा ग्रुप के पास गया। टोयोटा ग्रुप ने कहा ये पिस्टन रिंग हमारे काम की नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, उसको वापस कर दिया। वापस से मिस्टर होंडा स्कूल गए, टीचर्स ने क्रिटिसाइज किया, दोस्तों ने क्रिटिसाइज किया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। कई लोगों ने मदद की। उसी समय जापान में अर्थक्वेक आया, अमेरिकन्स ने बॉम्बिंग किया, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई। उस समय अमेरिकन्स कुछ गैसोलीन कैंस छोड़ते जा रहे थे युद्ध के समय। इसके साथियों ने और इसने उनको कलेक्ट कर लिया। वर्ल्ड वॉर जब पूरा हुआ, उसने फिर से सोचा मुझे कुछ करना है, और उस समय बाइसिकल जो चलती थी, उसने सोचा मैं बाइसिकल पे अगर मोटर लगा दूं, इलेक्ट्रिकल मोटर, तो मेरे पास पैसा आएगा और मैं अपना कार्य शुरू कर सकूंगा। उसने मेहनत से इलेक्ट्रिकल मोटर बनाई, बाइसिकल पर फिट की, और धीरे धीरे उसका ये मॉडल इतना फेमस हो गया कि होंडा मोटर बाइक इंट्रोड्यूस की, और धीरे धीरे उसी कंपनी का बिजनेस टाइकून बन गया, जिसमें 100,000 से भी ज्यादा आज लोग कार्य करते हैं। इस स्टोरी में ये सीखने को मिलता है कि उसने जीरो से स्टार्ट किया और टॉप पे पहुंचा। प्रॉब्लम्स उसके पास भी आए, स्ट्रेसेस उसके सामने भी आए, पर उसकी जो सक्सेस थी वो थी पहली चीज डिजायर। लाइफ में वही सक्सेस होता है जिसका अपना विजन क्लियर होता है, अपने में एक बर्निंग डिजायर रहती है। मैं आगे इसको बताऊंगा, जिसको आजकल लेटेस्ट लैंग्वेज में कहते हैं योर पर्पस ऑफ द लाइफ, योर मीनिंग ऑफ द लाइफ। दूसरा था उसके गोल्स क्लियर थे। तीसरा था खुद में फेथ और अपने गोल्स में फेथ। जो सक्सेस का नेक्स्ट मंत्र रहता है विजन के बाद, अपने ऊपर विश्वास और आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर फेथ। ये दोनों फेथ और बिलीफ, थिंकिंग और बिलीफ, ये अगर मिल जाते हैं तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी कर सकता है। थिंकिंग एंड बिलीफ क्रिएट द फॉर्म। हेनरी फोंडा का भी जो सक्सेस था, हेनरी फोर्ड का, उसका भी यही था कि वो रोज कुछ सोचता था कि मैं अपनी बिजनेस में क्या नया चेंज लाऊं, अपनी कार में क्या नया चेंज लाऊं, रोज वो सोचता था। उसकी वाइफ उसके ऊपर फेथ करती थी, कहती थी कर डाल। तो वो रोज हर दिन अपने फैक्ट्री में एक चेंज लाता था अपनी ऑटोमोबाइल में, और धीरे धीरे वो चेंज लाकर उसने अपनी ऑटोमोबाइल को इतना वर्ल्ड फेमस कर दिया कि आज भी फोर्ड कार फेमस है। तो थिंकिंग, फेथ एंड बिलीफ, ये तीनों मिरेकल का काम करते हैं। फिर है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिन्यूस एक्शन करते रहेंगे, और मेन चीज है इसमें असेसिंग द रिजल्ट, इवैल्यूएशन। कोई भी बिजनेस में, इंडस्ट्री में, प्रोफेशन में तीन चीजें बेसिक रहती है। आपकी प्लानिंग कैसी है, आपका मैनेजमेंट कैसा है, और आपका इवैल्यूएशन कैसा है। अगर हम अपने लाइफ में इवैल्यूएशन करते हैं तो हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाते हैं। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पर। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, दोनों कान उसके जले हुए होते हैं, बर्न होते हैं, थर्ड डिग्री बर्न। तो डॉक्टर पूछता है ये कैसे हुआ, तुम्हारे दोनों कान कैसे जल गए। उसने कहा मेरा मोबाइल फोन पास में था और मैं प्रेस कर रहा था, आयरनिंग कर रहा था, इतने में मोबाइल फोन बजा, मैंने मोबाइल की बजाय प्रेस को उठा लिया। डॉक्टर ने कहा दूसरा कान कैसे जला, फिर से रिंग बज गई, फिर से प्रेस उठा ली। आज दूसरा स्ट्रेस एक मेजर आता जा रहा है, मोबाइल स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा है। जो समय हमें मिलता था वो हमारा कम हो गया। ट्रेन में जा रहे हैं, अपने लिए बहुत अच्छा समय है ट्रेन का, उस समय भी अगर हम अनवांटेड बात कर रहे हैं, जितना जरूरी है उतना ठीक है, पर अनवांटेड ऐसा हमें लगने लगा है कि शायद मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ये इनसिक्योरिटी का ही साइन है, कुछ चीज पकड़ के मैं दुनिया को कंट्रोल करना चाहता हूं। पर हम सभी जानते हैं दुनिया चलती रहती है, यूज करें, पर कितना यूज करें उतना हम अपने हाथ में रखें। पैदा होने से ही मरने तक प्रॉब्लम चलता रहता है, वुम टू टुम, वुम से पैदा चालू होता है और टुम तक चलता रहता है। इसीलिए बच्चा जब घर पैदा होता है, मदर के बाहर आता है, चिल्लाने लगता, रोने लगता है। मदर के अंदर रहता है तो बड़ा कंफर्टेबल रहता है। सबसे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन हर व्यक्ति की कहाँ है? मदर के अंदर। कितना आराम से बच्चा बैठा रहता है, कोई घंटी दबाने की जरूरत नहीं होती, उसको सब फूड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलता रहता है। पर बेचारा जैसे ही बाहर आता है, उसके स्ट्रेसेस चालू हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि जो समझदार व्यक्ति है वो अपने में परिवर्तन लाता है, और बेसमझ व्यक्ति दुनिया में परिवर्तन लाने की कोशिश में खत्म हो जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, रीजनेबल मैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड, अनरीजनेबल मैन इन ट्राइंग टू चेंज द वर्ल्ड ही पेरिश फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें भी क्या करना है कि हमें खुद को इतना मजबूत करना है, चेंज करना है, जिससे कि मैं वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर सकूं। एक और रियल स्टोरी आई स्ट्रेस का, जो मेजर एक और रीजन होता है, जॉब स्ट्रेस, लूजिंग द जॉब। आपके हाथ में जॉब है, बिजनेस है, आपके हाथ से छूट रहा, इसको हम लोग कहते हैं 100 पॉइंट्स स्ट्रेस के। एक जर्नलिस्ट ट्रेवल कर रहा था बस्तर के इलाके में, नाव में जा रहा था नदी के इस पार से उस पार। उसने नाविक से पूछा, जो कि आदिवासी नाविक था, रोज कितना कमा लेता है तू? तो उस व्यक्ति ने कहा 20 रुपए कमा लेता। जर्नलिस्ट ने कहा कि इस नदी के ऊपर ब्रिज बन रहा है इधर से उधर जाने के लिए, तो तेरा तो धंधा खत्म हो जाएगा, फिर तू क्या करेगा? अब आप देखो, ये एक 100% से भी ज्यादा स्ट्रेस है व्यक्ति के सामने। कई लोग हार्ट फेलियर हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं जब जॉब लूज हो जाता है। पर इस व्यक्ति ने बड़ा आंसर दिया अच्छी तरह, बहुत अच्छा हो रहा है, ब्रिज बन रहा है, लोगों के काम आएगा, भगवान मुझे और कुछ धंधा दे देगा। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था, कोई एमबीए डिग्री नहीं था, कोई ऑक्सफोर्ड डिग्री नहीं था, पर जो उसका आंसर था वो अंदर हार्ट से आया। क्योंकि जब जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। मैंने तो कई कंपनीज में देखा, एक कंपनी में गया, कंपनी प्राइवेट थी, सडनली कंपनी गवर्नमेंट हो गई। 3 साल जैसे ही कंपनी गवर्नमेंट से प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट थी प्राइवेट हो गई, तो कई व्यक्ति वहां से हॉस्पिटल आने लगे। जिस डॉक्टर के यहां ठहरा था मैं, वो बाईपास सर्जन था। उसने कहा, जब से ये कंपनी प्राइवेट हो गई, काफी पेशेंट यहां से आ रहे हैं, हार्ट डिजीज के, डायबिटीज के, ब्लड प्रेशर। अंदर जाकर देखा तो देखा कि जो लोग टॉप पे हैं, जैसे ही कंपनी प्राइवेट हुई उनमें इनसिक्योरिटी आ गई, यानी अब प्राइवेट जॉब है, अब काम करना ही पड़ेगा। पहले गवर्नमेंट जॉब था, सिक्योरिटी थी। अब ये दोनों वर्ड, सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, हमारे माइंड की ही प्रोडक्शन है। ऐसा कोई जॉब नहीं रहता सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड, पर हम अपने माइंड में क्रिएट कर देते हैं और उसका असर हमारे शरीर पर होता है। तो ये भी हमारे हाथ में रहता है, उस समय उस सिचुएशन को हम कैसा लें। इनसिक्योरिटी को भी सिक्योरिटी में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। हर व्यक्ति में महानता छिपी हुई है, संपन्नता छिपी हुई है, सफलता छिपी हुई है। मैन इज एन एकम्प्लिश्ड इंजीनियर्ड फॉर सक्सेस इंडो विद द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है, सफल हो सकता है, संपन्नता है उसमें, महानता है। ये डिपेंड करता है, एक वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं, अडॉप्टेबिलिटी। Adaptability means freedom from conditioning response. ज्यादातर व्यक्ति कोई भी सिचुएशन का सामना प्रीवियस मेमोरी से करता है. उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं, परसेप्शंस हैं, एटीट्यूड्स हैं, उसके अनुसार किसी भी सिचुएशन का सामना करता है. अगर उसकी पास्ट मेमोरी बहुत नेगेटिव रही, फियर से रही, तो उसका रिस्पॉन्स भी सिचुएशन के प्रति कमजोर रहेगा. एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है उस फियर से मैं अपने को खुला करूं, फ्री करूं, और वही व्यक्ति महान बनता है, आगे बढ़ता है. एक स्टडी में देखा कौन लोग ज्यादा जिए, जिन्होंने 100 साल से ज्यादा जिया, उनके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या थे. फर्स्ट फैक्टर वॉज रिस्पॉन्डिंग क्रिएटिवली टू चेंज. परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है, हर प्रोफेशन में चेंज आ रहा है. उस चेंज को अगर मैं समझकर अंडरस्टैंड करता हूं, आगे बढ़ता हूं, तो वो चेंज का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं आता है. चेंज को रेजिस्ट करता हूं तो प्रॉब्लम आते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाता है. इसलिए इंडियंस में इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज के चांसेस काफी रहते हैं. डॉक्टर गुप्ता ने भी बताया होगा कि इंडियंस में कोरोनरी आर्टरी डिजीज और डायबिटीज के चांसेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं. 6 times more वी आर प्रोन टू गेट. और इसका एक कारण हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है. रेजिस्ट जब व्यक्ति करता है तो बॉडी की बायोकेमिस्ट्री भी रेजिस्टेंस करती है. सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी. थोड़ी बहुत एंजाइटी हर व्यक्ति को रहती है, चिंता. इसको अगर हम पॉजिटिव वर्ड में कन्वर्ट कर दें, कंसर्न ठीक है, पर चिंता बिना कारण से चिंता, वो डेंजरस है. क्योंकि स्ट्रेस का जो मेजर स्ट्रेस रहती है वो फर्स्ट टाइप की स्ट्रेस है, एंटीसिपेटरी स्ट्रेस. एंटीसिपेटरी स्ट्रेस यानी आई एम सिटिंग हियर बट आई एम एंटीसिपेटिंग समथिंग इज गोइंग टू हैपन नेगेटिवली टुमारो इन माय फ्लाइट, इन माय वर्क, इन माय ट्रेन जर्नी, इन माय चाइल्ड. एंटीसिपेशन में मैं सोचने लगा, मैं हुआ कुछ नहीं पर सोच रहा हूं फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पास जो है छूट तो नहीं जाएगा. इसीलिए हमारी बहनें कहती है आजकल 4 तरह के दुखी हैं. एक खुद के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, चौथा बिना कारण दुखी. नंबर 3 और 4 बढ़ते जा रहे हैं. एंटीसिपेशन में क्या होता है, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म भी एंटीसिपेशन में काम करना शुरू कर देता है. क्योंकि हमारे माइंड में सेफ्टी वॉल्व नहीं है जैसे प्रेशर कुकर में है. प्रेशर कुकर में सीटी बजने लगती है. भगवान ने यहां सेफ्टी वॉल्व नहीं दिया. कभी कभी भगवान को कहता हूं इतना दिया होता तो कितना अच्छा होता. टेंशन होता, गुस्सा आता, चिंता होती, सीटी बजने लगती, चुप हो जाता, फिर से गुस्सा करता, फिर से करता. पर वो सीटी हमारे शरीर के ऑर्गन्स में बजती है और अलग अलग तरीके से बजती है. जिस फील्ड में, जिस सिस्टम में हमारा वीक है, जो जीन हमारा वीक है, उस जीन से हमारी सीटी बजने लगती है. लाइफ इज 10% वॉट एक्चुअली हैपन टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट. 10% कुछ होता है, 90% क्या होता है, हम जिस तरीके का रिएक्ट करते हैं बॉडी भी रिएक्ट करती है. तो कंसर्न ठीक है पर चिंता खराब चीज है. कभी कभी एक जगह गया, पेरेंट्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा था. आजकल जो जनरेशन आई है, ओवर डिफेंस पेरेंट्स. 12th का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, एमडी लेवल का व्यक्ति है, गया कंपनी में, बोला आज साहब नहीं है. कहाँ गए हैं? बच्ची का 12th का एग्जाम है, 9 बजे से 1 बजे तक वहीं खड़े रहेंगे बाहर. क्या हुआ? पहले भी होता था, अभी भी है. बच्ची को छोटी गाड़ी ले दी है, बच्ची जा रही है, उसके पीछे कार से जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर चौराहे से जब तक बच्ची क्रॉस नहीं हो जाती मेरे को स्ट्रेस रहता है। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ ओवर डिफेंस। जब हम ओवर डिफेंस अपने को करते हैं या बच्चे को देना चाहते हैं, बच्चे का भी जो फाइटिंग सिस्टम है वो बिल्डअप नहीं हो पाता। इसीलिए कंसर्न ठीक है, पर इतनी एंजाइटी नहीं हो जाए कि हमें हर सेकंड वो घटना याद आए। तीसरा है क्रिएटिविटी। मार्केट में वही सर्वाइव करता है जो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है। आजकल वर्ड यूज कर रहे हैं इनोवेटिव मैनेजमेंट। इनोवेटिव मैनेजमेंट मींस यू आर क्रिएटिंग एवरी टाइम न्यू थिंग, जिसके लिए अंबानी के लिए कहा गया विजन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल मींस हाउ यू क्रिएट न्यू थिंग इन योर मार्केट एवरी डे। और 21वीं सदी में वही सर्वाइव करता है जो क्रिएटिव पर्सन है, नई चीज कुछ लाता है। नेक्स्ट है एडॉप्टिव एनर्जी। और लास्ट है वांटिंग टू स्टे अलाइव, जो जिंदा रहना चाहता है। कई लोग ऐसे होते हैं बीमार होना ही चाहते हैं। कई बार मैं देखता हूं उनको हॉस्पिटल आना अच्छा लगता है। एक लड़की ने कहा, उसके डॉक्टर ने उससे पूछा, आपके लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव क्या था? उसने कहा, जब मैं बचपन में बीमार हुई, मेरे पिताजी रात भर मेरे पास बैठे रहे, उनका हाथ मेरे सिर पर था, वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। दिस शोज व्हाट? पेशेंट्स का अगर हम एनालिसिस करें, तीन टाइप के पेशेंट में एक टाइप के पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बीमार होना ही चाहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं, मैं रिटायर्ड हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये वर्ड जब भगवान के पास जाता है, भगवान सोचता है ये व्यक्ति तो खाली हो गया, इसने सब कुछ कर लिया, तो इसको कुछ दो काम, तो इसीलिए वो कुछ बीमारी भेज देता है। तो इसीलिए कभी भी ये नहीं कहना मैं रिटायर हो गया। जॉब से रिटायर्ड हुआ, प्रोफेशन से रिटायर्ड हुआ, जिंदगी से रिटायर्ड नहीं हुआ। जब तक मेरे लाइफ का मिशन पूरा नहीं हुआ है, तब तक मैं जिंदा हूं। माय मिशन इज नॉट ओवर। इसीलिए कहा गया अपने मिशन को हमेशा रखो। और ये देखा गया जिन लोगों में कुछ रहता है वो जल्दी ठीक होते हैं। मेरे को भी एक लेडी याद आती है, सीए ब्रेस्ट कार्सिनोमा ब्रेस्ट था, उसका स्टेज फोर था। स्टेज फोर में लीवर लंग मेटास्टेसिस था, यानी कैंसर फैला हुआ था। मेडिकल के हिसाब से 3 महीना जिंदा रह सकती है। पर उस लेडी ने कहा, बहुत सिंपल लेडी, उसने कहा आप ट्रीटमेंट चालू करो, आप घबराइए नहीं, आप जो भी इलाज मुझे देना चाहते हैं दीजिए। उसको जैसे ही सिंपल कीमोथेरेपी 2 साइकिल दी, उसका मेट्स डिसअपीयर होने लगा, लीवर और लंग मेट्स डिसअपीयर हो गया, मास सॉफ्ट होने लगा। उसने कहा मेरी एक लड़की है, उसकी जब तक शादी नहीं होगी मैं मरूंगी नहीं। और वो 3 साल तक जिंदा रही, लड़की की शादी करा दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई, फिर से मैट्स चालू हो गए। तो उसका क्या था, जो मिशन था वो कंप्लीट करके वो गई। इसीलिए लाइफ में कभी भी हम ये ना कहें मेरा मिशन पूरा हो गया, नहीं तो कहीं ना कहीं हम ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। भगवान को कहो मैं अभी तो बहुत काम है मेरा, तो भगवान कहेगा ठीक है करते रहे। इसीलिए कहा गया हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी रहती है किसी भी चीज का सामना करने के लिए, उसको मेडिकल लैंग्वेज में गैट्स कहते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाता। पर ये कैपेसिटी डिपेंड करती है फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, इमोशनल कैपेसिटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, सोशल कैपेसिटी। जिसको आजकल लैंग्वेज में कहा जाता है, मैनेजमेंट लैंग्वेज में IQ, EQ, SQ. IQ, यू आर हायर्ड, टेक्निकल कॉम्पिटेंस. EQ, यू आर प्रमोटेड, यू आर मैनेजमेंट ऑफ योर इमोशन. SQ, यू आर सेटिस्फाइड. इन अवर बॉडी वी नीड स्टेमिना, इन अवर माइंड वी नीड स्ट्रेंथ, इन अवर सोल वी नीड इंड्योरेंस. स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, तीनों ठीक रहते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन का सामना अच्छी रीति कर सकते हैं. तीनों में कहीं भी गड़बड़ है तो हम कहीं भी मैच को हार सकते हैं. इसीलिए अभी लेटेस्ट स्टडी में कहा, IQ कंट्रीब्यूट 20% ऑफ सक्सेस, EQ कंट्रीब्यूट मेजर पार्ट ऑफ सक्सेस. केवल IQ होना ही सफलता का मंत्र नहीं है, उसके साथ यू नीड बोथ थिंग्स, क्योंकि SQ हमें जीवन का मीनिंग देता है. कई लोग के पास बहुत कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सब कुछ है, फिर भी वो लोग अपने में अंदर खालीपन फील करते हैं. कई लोगों ने कहा, बोला हम लोग एम्प्टी फील कर रहे हैं. एम्प्टी फील कर रहे हैं यानी कहीं ना कहीं उनका जो मीनिंग ऑफ द लाइफ है वो लैकिंग है. इसीलिए तीनों का आज जरूरी है. तीनों ठीक रहते हैं तो हम सिचुएशन का सामना अच्छी रीति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन एक प्लास्टिक ऑर्गन है. हमारा मस्तिष्क बाहर की सिचुएशन से अफेक्टेड होता है. हमारे विचार हमारे ब्रेन को असर करते हैं. इसीलिए आजकल कहा जाता है, सोचने के पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक. पहले कहा जाता था बोलने के पहले सोचो, अब लेटेस्ट वर्जन है थिंक बिफोर यू थिंक. क्योंकि मेरा हर विचार बॉडी के 75 ट्रिलियन सेल्स को असर कर रहा है. बॉडी मुझे कैसी चाहिए मेरे विचारों के ऊपर है. इसीलिए नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा अपनी किताब में, यू आर व्हाट यू थिंक, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन, यानी आप वही हो जैसा आप सोचते हो. नेक्स्ट. दूसरा मैकेनिज्म हमको भगवान ने दिया, ह्यूमन बींग्स में एक बायोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है. ये सिस्टम हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिला. हमारे एंसेस्टर जब जंगलों में रहते थे तो उनके सामने स्ट्रेस केवल एक आती थी. क्या आती थी? शेर आया. अब जब कभी उसके सामने शेर आता था तो उसका पास केवल दो मैकेनिज्म थे, या तो वो शेर से लड़े या शेर से भागे, फाइट और फ्लाइट. पर आज हमारे सामने 21वीं सदी में शेर नहीं है, पर हमारा मैकेनिज्म वही का वही है जो हमारे एंसेस्टर में था. अब क्या होता है, हमारे सामने शेर नहीं आता है, पर जब कभी भी कोई व्यक्ति हमारी फीलिंग को हर्ट करता है, ईगो हर्ट होता है, तो सेम मैकेनिज्म काम करता है जो उस समय था. जब कभी हम कोई चीज एंटिसिपेट करते हैं, कोई चीज में डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो हमारा वही मैकेनिज्म चालू हो जाता है. हर व्यक्ति अपना एक कंफर्ट लेवल बनाता है लाइफ में और वो उसी के अंदर रहना पसंद करता है, जिसको कहा गया सिक्योरिटी. जैसे ही कंफर्ट जोन उसका क्रॉस होता है, अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, तो तब उसका ये बॉडी का मैकेनिज्म चालू हो जाता है. भगवान ने हमें ये दो मैकेनिज्म दिए. कोई भी घटना को हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे अंदर जाती है ब्रेन में, ब्रेन से नेक सेंटर जाती है, फिर वो एनालिसिस होती है, रिफाइन होती, यहां आकर वापस आती और हम एक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड अवर लॉजिकल रूट, लॉन्ग रूट. भगवान ने एक शॉर्ट रूट बनाया, कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली हमारे इमोशनल सेंटर पे जाती है और हम फास्ट एक्ट करते हैं. एक हो गया शॉर्ट रूट, एक हो गया लॉन्ग रूट, एक हो गया लॉजिकल रूट, एनालिसिस रूट, एक फास्ट रूट. फास्ट रूट इसलिए बनाया भगवान ने कि जब कभी भी सिचुएशन फास्ट आए, एकदम मैं डिसीशन लूं, नहाने जा रहा हूं, गर्म पानी है, एकदम मैं क्या करूंगा, गर्म पानी को बंद कर दूंगा, हाथ हटा दूंगा, उस समय लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा चांसेस है कि नहीं, रख सकता कि नहीं, तब तक हाथ गायब हो जाएगा। सड़क क्रॉस कर रहा हूं, सड़क पे देखा कार नहीं है, इधर कार नहीं है, क्रॉस कर जाऊंगा, लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा कितने चांसेस है कार कब आएगी, वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊंगा। पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज ये हो रहा है, व्यक्ति इंपल्सिव होता जा रहा है, क्विक वन डे मैच खेलने की कोशिश कर रहा है। अब वन डे मैच में क्या होता है, बॉडी भी वन डे मैच खेलती है, हमेशा हमारा इमरजेंसी रूट काम करता रहता है बिना वजह से, इसलिए हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जल्दी जल्दी निकलते हैं, बिना वजह से निकलते हैं, इसलिए इंग्लिश में कहते हैं डिजीज। डिजीज का अर्थ क्या हुआ, डिस ईज, ईज का अर्थ क्या हुआ, भगवान ने कहा आराम से खाना, आराम से रहना, आराम से सब कुछ करना, पर हमने डीआईएस जोड़ दिया, डिसीज, जल्दी जल्दी बिना वजह से खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाना भी एक काम हो गया, खाना निपटा दो। अब क्या खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, फटाफट खा रहे हैं, तो जो खाना यहाँ पचना चाहिए स्टमक के ऊपर पोर्शन में और यहाँ, वो पचता नहीं है, नीचे जाता है, इसलिए स्टमक में तो दांत लगे नहीं है, दांत यहाँ लगे हैं, यहाँ मेहनत करना पड़ती है। पॉलीफेसिक पर्सनैलिटी, और रिसेंटली जो भी प्रॉब्लम समाज में आए कुछ यंगस्टर्स ने किए, वो इसीलिए किए कि एनिमल इंस्टिंक्ट, हायर सेंटर का यूज ही नहीं कर रहा है, क्या होगा इस घटना के बाद में उसको पता ही नहीं, इसी को कहा जाता है लैक ऑफ ईक्यू, लो ईक्यू, फट से आया, जो आपने सुना होगा होलीफील्ड और माइक टाइसन की लड़ाई में, माइक टाइसन ने होलीफील्ड का कान काट लिया लड़ाई में, क्या हुआ पिछली जैसे ही माइक टाइसन ने होलीफील्ड को देखा, उसकी मेमोरी ने कहा ये वही व्यक्ति है जिससे झगड़ा हुआ, शॉर्ट रूट ने कहा आज ले ले, तेरे सामने आ गया ये व्यक्ति, उसने बिना एनालिसिस के उसका कान काट लिया और कई मिलियन डॉलर्स नुकसान हुए। इसीलिए लाइफ में पहला प्रिंसिपल है बैलेंस, बैलेंस का अर्थ है दोनों रूट का बैलेंस, कहां मुझे लॉजिकल होना है, कहां इमोशनल होना है। लाइफ ना लॉजिकल है ना इमोशनल है, कभी कभी रिलीजियस बिलीफ में, स्पिरिचुअल बिलीफ में लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वो भी मैच हारते हैं, हमें दोनों में बैलेंस होना पड़ता है, इसीलिए भारत में नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं भारत में, आपने देखा भारत से ये नमस्ते गया पूरे वर्ल्ड में, अब दूसरे लोग भी करने लगे हैं, लॉजिकल एंड इमोशनल, हेड एंड हार्ट, ब्रेन के दो पहलू हैं, लॉजिकल हेमिस्फीयर, इमोशनल हेमिस्फीयर, इसलिए जब हम नमस्ते करते हैं तो कहते हैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं, दूसरे देशों में एक हाथ मिलाते हैं 50% आपके साथ हूं, इसीलिए हमारा नमस्ते बहुत अच्छा है। और जब कभी समय मिले, जब कभी स्ट्रेस आए, पहले अपने हार्ट चक्र के ऊपर हाथ को जोड़ दो, ब्रीद इन एंड आउट करो, सांस को छोड़ो। सेकंड एक्सरसाइज, क्लैप कर सकते हो, क्लैप करने से हमारे दोनों ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, इसलिए जब कभी भी प्रॉब्लम आए एक्सरसाइज करो। एक्यूप्रेशर हमारा होता है। नेक्स्ट, और ज्यादातर डर हमारे इमेजिनरी है, व्यक्ति को सबसे ज्यादा मार खाता है डर से, क्योंकि डर से मेरा डर का मैकेनिज्म चालू हो जाता है, जो मैंने कहा पहला मैकेनिज्म था फाइट फ्लाइट, तीसरा मैकेनिज्म आज जो कॉमन हो रहा है फ्राइट, वहीं का वहीं ठंडा हो जाता है, इसलिए सडन हार्ट अटैक कॉमन हो रहा है। फियर में हमारा ब्लड पाओ में इकट्ठा हो जाता है, हार्ट में नहीं आता और हार्ट अटैक होता है। फियर का अर्थ होता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। 90% फियर इमेजिनरी है, अनरियल है, पर व्यक्ति डर से इतना घबरा जाता है, फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ फ्यूचर, ये दो डर व्यक्ति को खा जाते हैं। इसीलिए उस फियर को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। स्ट्रेस का अर्थ है डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेस नहीं है। इट इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। अगर आपके पास रिसोर्सेस अच्छे हैं तो आपको मजा आएगा, अगर आपके पास रिसोर्सेस ठीक नहीं है तो वो डिस्ट्रेस हो जाएगी, और रिसोर्सेस अच्छे हैं तो वो आपकी यू स्ट्रेस हो जाएगी। तनाव एक दर्द, एक रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस इज अ रिस्पॉन्स टू एनी सिचुएशन। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। हम सभी के सामने जब सिचुएशन आएगी, बॉडी हमें तैयार करेगा। नेक्स्ट। अब अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग स्ट्रेसेस आती है। वो किस प्रोफेशन में है, लाइफ के किस लेडर पे है, क्या जॉब कर रहा है, पर ज्यादातर देखा गया व्यक्ति को जॉब से दो तरह की स्ट्रेस सबको तंग करती है। एक तो है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। दूसरा जॉब डिससेटिस्फेक्शन, आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा, जबरदस्ती कर रहे हो, इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को होते हैं। क्यों होते हैं? मंडे को। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मंडे को होते हैं दिल्ली में भी। क्यों होते हैं? मंडे उठा, प्रीवियस मेमोरी ने खोला, वही काम, वही लोग, वही बॉस, वही चीज, क्या मजा, गुड मॉर्निंग सर, क्या गुड मॉर्निंग, वही का वही। यहां मजा नहीं आया तो यहां हमारी कोरोनरी आर्टरी कहती है अच्छा तुझे मजा नहीं आ रहा है तो मुझे भी नहीं आ रहा, तो वो दब जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसीलिए मंडे को भी जब उठें, आप मंडे को भी कहिए कि मुझे जॉब में अच्छी तरह जाना है। कन्वर्ट योर जॉब इनटू गेम। हमारे प्रेसिडेंट ने कहा वर्क डोंट किल द पीपल। कार्य किसी को नहीं मारता। I work 18 hours. I make my cup of tea at 3 o'clock. I start my day. बोला कार्य नहीं मारता, पर कार्य का perception व्यक्ति को मारता। Job monotonous. Job dissatisfaction. माता पिता ने बोल दिया डॉक्टर बन जा, बनना नहीं था, अब मजा नहीं आ रहा है। तो job monotonous, job dissatisfaction, job environment, meetings, ये सब job stress को बढ़ाती है। नेक्स्ट। पर अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल रीजन जो कि मैंने यहां आके सीखे, और मैं आपको वही टिप्स दूंगा। प्रोफेशनल स्ट्रेस हर एक की अपनी अपनी है। अब लाइफ है क्या? पहला प्रिंसिपल लाइफ का जो मैंने सीखा, एवरीथिंग फ्लोज इन यूनिवर्स, अलाउइंग थिंग्स टू फ्लो नेचुरली इज द वे ऑफ लाइफ। हर चीज क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, मूव कर रही है। अर्थ, एयर, वाटर फ्लो कर रही है। इसको फ्लो करने देना ही जिंदगी है। इसीलिए टाओ चाइनीज प्रोवर्ब है, व्हाटएवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, व्हाटएवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज जितनी फ्लेक्सिबल है, ओपन है, वो चीज बढ़ती है। जो चीज रिजिड और सख्त है, वो चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए आप देखो हमारा जॉइंट्स कैसे बनाए भगवान ने, फ्लेक्सिबल, इधर देख सकता, यूं कर सकता, मोड़ सकता। भगवान ने ऐसे मशीन जैसा नहीं बना दिया, रोबोट बन जाते हम। फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए रोज दिन में 3-4 बार अपने को फ्लो करो, ओपन करो। अभी भी करिए, जॉइंट्स को ऊपर करिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ब्रीद आउट करो, नीचे लाओ, शोल्डर्स को घुमाओ। जब समय मिले, जहां मिले, अपने को ढीला करो। रेलवे स्टेशन है, डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हो, करने लगो। ज्यादातर लोग कहते हैं अरे सर कैसे करें, लोग समझेंगे पागल हो गया। लोगों को समझो पागल हो गया है, पर हम अपनी हेल्थ को ठीक रखें। फ्लेक्सिबल। अब प्रॉब्लम कहाँ आता है? अब प्रॉब्लम कहां आता है? एल आई एफ ई, लाइफ का अर्थ हुआ इन्फिनेट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड लव। प्यार है तो जिंदगी है, प्यार नहीं है तो ड्राई है, सूखा है। इसीलिए डॉक्टर बर्नी सीगल ने कहा इल, आई एल एल, इल का अर्थ हुआ आई लैक लव। बीमारी चालू हुई, अकेला हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया, अपने आप से ही सीमित हो गया, उसके कनेक्शन खत्म हो गए, खुद से कनेक्शन खत्म हुए तो बीमारी चालू हुई। इसीलिए गीत है एक, जिंदगी बहुत एक अच्छा गीत है, क्योंकि म्यूजिक भी हमें रिलैक्स करती है। मैं बीच बीच में सॉन्ग सिलेक्ट करके, लाइफ का अर्थ क्या है, जिंदगी है क्या, वो गीत है, जब तक सेट कर लें। सेट है? हाँ, बजा दीजिए दो तीन लाइन। चलो जब तक बजे, पहला खुशी गायब होने का कारण, हम हर व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ऑल अनहैप्पीनेस अराइज बजर। आप भी गाते रहना। सागर भी, दोनों है जिंदगी, गम का सागर भी है, उसको भी क्रॉस करना है, और प्यार का गीत है, इसको अच्छी तरह प्ले करना। तो पहला कारण, हर व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एपिसीटस, दिस स्टेटमेंट वॉज फ्रॉम एपिसीटस, थ्रू विच आई लर्न लॉट। ऑल अनहैप्पीनेस अराइज इन ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन over which we don't have any control. In trying to do this, we send futile attempt to our body and disease start. हर व्यक्ति क्या करता, control करने की कोशिश करता है, जो मैंने बताया flexible and flowing। इसीलिए हमारे देवी देवता ऐसे बताए गए, लक्ष्मी को भी ऐसा बताया गया। आपने देखा लक्ष्मी खड़ी हुई है और पैसा आ रहा और जा रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, receiving and giving, coming and going। पर हमने क्या किया, लक्ष्मी को ब्लॉक करना चालू किया, तो यहां भी ब्लॉक चालू हो गया। इसीलिए करंसी को ब्लॉक नहीं कर, लक्ष्मी आई है जाने भी दो उसको, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाता है, वो उसको ब्लॉक करेंगे तो वो ब्लॉक देगी। तो कंट्रोल ना करें, फ्लो करें। खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। दूसरा कारण, हम सभी अपने माइंड में इतना सोचते हैं, ये हो जाए तो तब मैं खुश हूंगा, ये हो जाए तो तब खुश हूंगा, बच्चों का ये हो जाए तो खुश हूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाए तो खुश हूंगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ हो जाता है। हैप्पीनेस इज अलोंग द पाथ। इसीलिए इतना चिंता ना करें। एक व्यक्ति के पास बहुत धन था कि 6 पीढ़ी खा सकती थी, फिर भी चिंता में घूमता रहता था। लोगों ने पूछा, सर आपको क्या चिंता, आपके पास तो इतना धन है कि 6 पीढ़ी खा सकती। आई एम वरिड फॉर 7 जनरेशन। ये होता है फ्यूचर का। सेकंड, हाफ ऑफ द हार्म इन द वर्ल्ड इज डन, पीपल वांट टू फील इम्पोर्टेंट। ज्यादातर प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल्स के कहां आते हैं, ईगो प्रॉब्लम, ईजीओ, ईगो यानी मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता, मेरे बिना नहीं होता। तो उसके साथ वाले फिर कहते हैं, अच्छा तू ही कर, हम बैठ के आराम करते हैं। तो इसीलिए कभी टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी टीम अच्छी है तो आपका स्ट्रेस कम होगा। थर्ड, मैं अपने परसेप्शन से दूसरों को देखना चाहता हूं। हर व्यक्ति क्या चाहता है, पर्टिकुलरली हम एशियंस इंडियंस में ये बहुत डीप डाउन नेचर है। हर व्यक्ति अपने चश्मे से बच्चों को देखना चाहता है। मैं डॉक्टर हूं, बच्चा डॉक्टर हूं, ये होना चाहिए। बच्चा नहीं बनता, स्ट्रेस। मैंने जितने भी स्ट्रेस के मेजर रीजन देखे, 50% से ज्यादा ये, कार्डियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, वाइफ। बच्चा लड़की नहीं बनना चाहती, बोलती ना मैं डॉक्टर बनना चाहती ना प्रोफेसर, टेंशन तीनों में। हम अपने चश्मे से दूसरों को न देखें। अगर मेरा परसेप्शन दूसरों के परसेप्शन से नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, डू नॉट सी द थिंग एज यू आर, सी द थिंग एज दे आर। आप जैसा है वैसा उसको देखिए। और आपने पहला लेसन यहां ब्रह्म कुमारी इसमें समझा, हर आत्मा एक यूनिक, एक स्पेशल है। उस स्पेशलनेस और यूनिकनेस को पहचानना ही मेडिटेशन है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, यू आर अवेयर ऑफ योर यूनिक पार्ट एंड दैट यूनिकनेस यू हैव टू कम आउट। और जॉब ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इज टू एक्सप्रेस दैट पार्ट इन दैट चाइल्ड। हमारा बच्चे के प्रति कोच के कोच जैसा होना चाहिए, फादर मदर जैसा नहीं होना चाहिए। कोच जैसे उस खिलाड़ी के अंदर से निकालता है, वैसे ही माता पिता उस बच्चे के अंदर क्या छिपा है वो निकाले। नेक्स्ट, डू नॉट जज। नहीं, एक मिनट, इसीलिए कहा जजमेंटल माइंड सबसे तकलीफ देता है। और मैंने जो दूसरी चीज यहां आके सीखी, कभी कोई चीज को प्रूव मत करो, जज नहीं करो। आई एम नॉट हियर टू प्रूव एनीथिंग, इट इज अप टू यू, आपका क्या परसेप्शन है। जैन मास्टर की बहुत अच्छी स्टोरी है। जैन मास्टर बैठे हुए थे, उनके सामने दो चेले बैठे थे। एक चेले ने कहा, मास्टर ये चीज ऐसा होना चाहिए। मास्टर ने कहा, यू आर राइट। दूसरे चेले ने कहा, मास्टर ये चीज ऐसा होना चाहिए। मास्टर ने कहा, यू आर राइट। थर्ड चेला जो देख रहा था, कहता, मास्टर हाउ कम ही इज राइट, ही इज राइट। मास्टर ने कहा, यू आर ऑल्सो राइट। सो दैट इज कॉल्ड नॉन जजमेंटल। हमारी दादी कहती है हमेशा, हारमोनी का अर्थ है हार मानी, हार मान ली। सो यू डोंट हैव टू प्रूव, आई डोंट हैव टू प्रूव आई एम दिस एंड आई एम दिस, वट एवर आई एम आई एम। आजकल लेटेस्ट वर्जन है, मैं जो हूं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं। इसीलिए लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल। ज्यादातर व्यक्तियों का टेंशन का प्रॉब्लम यह भी होता है, अपना स्विच दूसरों को दे देते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने यही देखा, एक और इसके बाद, हर कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर हम लोगों के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लोकस ऑफ कंट्रोल शुड बी इंटरनल। इसीलिए हम कहते हैं इन चार्ज। इन चार्ज इंग्लिश शब्द है, इन चार्ज का अर्थ हुआ चार्ज इन। अगर हम अपने को चार्ज इन नहीं करेंगे तो आउटर चार्ज करेंगे, सिगरेट से, बीड़ी से, तंबाकू से, ड्रग से, दूसरों से। अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूं, अच्छे हो अच्छे हो, दूसरों से हम अप्रूवल लेंगे। मेजर साइकोलॉजिकल बिहेवियर जो लोगों को कमजोर कर देता है, अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। हर व्यक्ति क्या चाहता है, उसको अप्रूवल चाहिए दूसरों से, नहीं मिलता प्रॉब्लम आता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा, नो वन कैन हर्ट यू अनलेस यू वांट टू गेट हर्ट, नो वन कैन टेक अवे योर सेल्फ रिस्पेक्ट अनलेस यू वांट टू गिव इट। इसलिए लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल। टफ पीपल कौन सर्वाइव करेगा 21वीं सदी में, जो माइंड से टफ है, स्ट्रांग है। जो विवेकानंद ने कहा था, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका ब्रेन आयरन जैसा हो, नर्वस सिस्टम स्टील जैसा हो, कि छोटी छोटी चीजों में हम इतना सेंसिटिव नहीं हो जाएं। नहीं तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया, मैच जीत रहे हैं, हार्ट अटैक हो गया। अगर इतना हम सेंसिटिव हैं, मैच कहां है और हार्ट अटैक यहां हो रहा है, तो मेरा नर्वस सिस्टम ठीक काम नहीं कर रहा है। फीलिंग आए,
पर फीलिंग इतना फील नहीं कर रहे हैं कि कारोनरी दब जाए। फीलिंग ठीक है, सबको आती है, पर उसको हम इतना डीप नहीं ले जाएं। लास्ट है डिजायर्स, इच्छाएं एक के बाद, जरूरत नहीं है। जबरदस्ती मोबाइल ले लिया क्योंकि उसके पास है, मेरे पास भी है। अभी मैंने देखा सड़क पे व्यक्ति लेडी जा रही है ऐसे ही, मैंने कहा ये रियल बात कर रही है कि, बोला नहीं ये तो खाली है ऐसे ही बात कर रही है। तो जरूरत है तो बात करिए। डिजायर फुलफिल्ड, डिजायर। एक बहुत अच्छा जोक याद आया इस पे। एक हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हैं, मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हैं सर्व इंस्पेक्शन के लिए। वहां भी उनका बैचमेट था। वार्ड में देखते हैं उनका क्लासमेट सुरेश सोया हुआ है। बोला ये सुरेश यहां क्या कर रहा है? बोला सुरेश की शादी वो रीटा से होने वाली थी जो अपनी बैचमेट थी, उससे नहीं हुई तो यहां भर्ती हो गया। दूसरे वार्ड में गए तो रमेश सो रहा था। बोला रमेश यहां क्या कर रहा है? बोला इसकी शादी उससे हो गई, ये यहां भर्ती हो गया। डिजायर फुलफिल्ड, डिजायर अनफिल्ड। इच्छाएं बड़ी। नेक्स्ट, दूसरी पर्सनालिटी जो नुकसान करती है, टाइप ए पर्सनालिटी। शायद डॉक्टर गुप्ता ने कल बताई होगी आपको टाइप ए वाले। ए वाले का सिंपल मैं ये कहूंगा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान शांति दो, पर जल्दी करो, गिव मी पेशेंस, बट हरी अप, जल्दी जल्दी खाएगा, बात करेगा, देखेगा टीवी पे, सब फटाफट करेगा, उसको टाइम का बड़ा वो होता है, तो उसका एड्रिनल ग्लैंड काम ही करता रहता फास्ट, क्योंकि उसको बहुत हरी रहती है, उसके लिए लगता है दुनिया खत्म हो रही है। आज संडे सर, रिलैक्स करो। नहीं नहीं, सब भाग रहे हैं, मैं कैसे रिलैक्स करूं? बस में ट्रेवल कर रहा है, सीट खाली है सर, सीट खाली है, आराम करो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पर टाइम नहीं है। दिस इज कॉल्ड टाइप ए पर्सनैलिटी, नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी। दूसरी पर्सनैलिटी जो बीमारी जल्दी लाती है, हर चीज को दबाते जाना, अंदर ही अंदर रखते जाना, कोई है नहीं, पत्नी बड़ी टाइट, बॉस टाइट, उस व्यक्ति की हालत क्या होगी? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अब उसको बोलना है कुछ बॉस को या वाइफ को, तो क्या करेगा? दो पैग लेगा, दो पैग जैसे ही गए फिर बोलने लगेगा, फिर जैसे डाउन हुआ खत्म। नॉन एक्सप्रेसिव सप्रेस इम्यून सिस्टम, और टोटल स्ट्रेस मैनेजमेंट इस पे डिपेंड करता है, हाउ यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, इमोशंस। इसलिए एक स्टडी में देखा, जिनकी पत्नी अपने पति को बाहर तक छोड़ने आती है काम के समय, जब वो सुबह जाता है और कुछ अच्छे शब्द उसको बोलती है, जल्दी आना, मैं वेट करूंगी, और शाम को वापस ग्रीट करती है उसको आने पर, उनको हार्ट अटैक कम पाए गए। जो लोग कुत्ते को लेकर घूमते हैं उनमें भी हार्ट अटैक कम पाए गए। क्या हुआ? यूरोप और अमेरिका में आप देखते हैं कुत्ते बिल्ली बहुत रखते हैं। तो उनसे पूछा, बोला जब कुत्ते से बड़ा अच्छी तरह बात करेंगे, हाउ आर यू डॉगी, एवरीथिंग ओके, और कुत्ते को कुछ बोलो तो जवाब नहीं देता, आदमी को बोलो तो जवाब देता है। तो इसीलिए आजकल हम भी यहां लोगों को बोलने लगे हैं। जिन लोगों को हार्ट डिजीज होती है हम कहते हैं कुत्ता रख लो, कम से कम बात तो करो। विकास, लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज ए मेजर स्ट्रेस। दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, मेजर स्ट्रेस है। इसलिए स्ट्रेस को कम करना है, घर में कम्युनिकेशन, ऑफिस में कम्युनिकेशन, बात करो, कम्युनिकेट करो। इसीलिए देखो विजन था मिस्टर अंबानी का, कई हमारे भारतीय ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं पर बोल तो सकते हैं। उसका विजन आज देखो गांव-गांव में चला गया, बोल तो सकते हैं, हर एक के पास मोबाइल आ गया। कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कम्युनिकेशन से कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बात करो। और जितना आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उतना बीमारी के चांसेस कम होंगे। इसीलिए हाउसवाइफ में देखा गया कैंसर ज्यादा होता है। क्यों देखा गया? क्योंकि अगर उसका हस्बैंड और बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अकेली रहती है घर में, तो उसको चांसेस रहते हैं। इसीलिए भगवान ने मैरिज बनाई। मैरिज का अर्थ ही है दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं। मेल है हेड, फीमेल है हार्ट। हेड और हार्ट को मिला दिया, दिल और दिमाग को मिला दिया।
जिससे कि दोनों कम्युनिकेट करें। अगर दोनों हेड हेड हो जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। इसीलिए जरूरी है घर में जब आप जाओ बातें करो, कम्युनिकेट करो। अमेरिका और इन देशों में अगर हस्बैंड 5 बार नहीं बोल दे आई लव यू डाइवोर्स हो जाता है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पर्सनैलिटी परफेक्शन, हर चीज मैं ठीक करूं, मेरे से कोई गलती नहीं हो। बच्चे बड़े अच्छे होना चाहिए, छोटा बच्चा भी हो घर में कोई आए गुड मॉर्निंग करो अंकल को, नहीं करो तो पिटाई हो जाती है। अब बेचारे छोटा बच्चा बच्चा ही है। एक बार ट्रेन में आ रहा था, एक माता छोटे बच्चे को पूरा कंट्रोल कर रही थी। अब वो था छोटा बच्चा, अब ट्रेन में था, माँ जैसे ही उसको देखे वो ठीक हो जाए, जैसे ही माँ इधर देखे फिर शैतानी करे। अब आप क्या दिखा रहे हो लोगों को कि मेरा बच्चा बहुत बिहेवियर में नॉर्मल है। जो बच्चा बच्चा ही है वो शैतानी करेगा ही, जो बच्चा शैतानी नहीं करे यानी गड़बड़ है। तो कभी भी हम परफेक्शन ना लाए। परफेक्शन कई तरह के स्ट्रेसेस को लाता है। और मेरे पास कम से कम 10 रियल एग्जाम्पल है हस्बैंड को बीमारी कैसे आई केवल उस वाइफ के परफेक्शन से, उसके नेचर से। तो ये परफेक्शन हम ठीक हैं, अच्छी चीज है, पर दूसरों पे न ला दें। क्योंकि साइकोलॉजी में कहा जाता है वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट। हम सब में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है, तभी तो आदमी है। तो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। और हर व्यक्ति का अपना लेवल रहता है, उसको स्ट्रेस उस लेवल से आती है। गरीब के लिए रोटी कपड़ा मकान, कुछ दूसरे लोगों को सिक्योरिटी, तीसरे लोगों को सोशल नीड्स, और ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोगों को यहाँ प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस। अब जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, पैसे वाला है, तो उसका स्ट्रेस कहां से आएगा? उसका रोटी कपड़ा मकान से नहीं आएगा, उसका यहां से आएगा, मैं भी कुछ हूं, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। एक लेडी मेरे को याद आई, बहुत हाई प्रोफाइल लेडी, पार्टी में गई, वापस आई तो डिप्रेशन में चली गई। क्या हुआ? लेडी ने बहुत मिलियन डॉलर की रिंग पहनी हुई थी। अब वो जैसे नेचर होता है, घड़ी अगर मेरी बहुत महंगी है नहीं, अगर समझो है, तो मैं क्या करूंगा, पार्टी में बार बार टाइम देखने की कोशिश करूंगा। लोगों ने कह दिया बड़ी अच्छी घड़ी है, कहां से लाए हो, मजा आएगा। उस लेडी को किसी ने कुछ नहीं पूछा, डिप्रेशन में चली गई। इसीलिए हर एक को क्या चाहिए, अल्टीमेट क्रेविंग ऑफ ए ह्यूमन बींग इज व्हाट, एप्रिसिएशन, रिकॉग्नाइजेशन। और बहुत अच्छा कैरेक्टर है लीडर का, जो अच्छा लीडर बनना चाहता है, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट योरसेल्फ, एप्रिशिएट अदर्स। जब आपको राइट समय पर राइट जगह पर उस व्यक्ति को एप्रिशिएट करोगे, वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए 4 तरह की पर्सनैलिटी है, क्योंकि समय की रेखा को देखते हुए ये 18 आवर्स लेक्चर को मैं कंपाइल कर रहा हूं। 4 तरह की पर्सनैलिटी रहती है। डॉक्टर थॉमस हैरिस ने बताया था अपनी किताब में, आई एम ओके यू आर ओके। एक व्यक्ति कहता है आई एम ओके यू आर नॉट ओके, मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं है, तो उसकी गर्दन कैसी होगी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमेशा अकड़ा हुआ रहेगा, गुड मॉर्निंग कुछ गुड मॉर्निंग नहीं, वो सीधा जाएगा अपने यहां। दूसरा कहता है आई एम नॉट ओके यू आर ओके, जिस बच्चे की बहुत पिटाई हुई, माँ बाप ने धन धन इंस्ट्रक्शन दी, तू ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करेगा बेचारा, वो ऐसी मैं ठीक नहीं हूं, उसकी गर्दन ऐसी रहेगी, एक की गर्दन ऐसी, एक की गर्दन ऐसी। जब दोनों भगवान के सामने जाते हैं, भगवान भी कंफ्यूज हो जाता है, एक ऊपर देख रहा है एक नीचे देख रहा है, तो प्रेयर रिजेक्ट हो जाती है। तीसरा होता है आई एम ओके यू आर ओके एवरीथिंग ओके, मैं ठीक हूं आप ठीक हैं सब कुछ ठीक है। एक और डॉक्टर ने लेटेस्ट वर्जन दिया, बोला कोई बात नहीं, अगर बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैं ठीक हूं आप ठीक हैं, दुनिया में इतना करप्शन है, प्रॉब्लम है, इस देश में सड़क ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो बोला ऐसा तो बोल सकते आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके बट दैट इज ओके। ये फार्मूला मैंने यहां सीखा। मैं भी अभी रिसेंटली गया था लेह लद्दाख, वहां से वापस मनाली से बाय रोड आए, 18 घंटे बाय रोड, ब्रेक 3, रोड था ही नहीं समझो, पत्थर ही पत्थर। 2-3 हमारे साथ वाले तो बिल्कुल चिल्लाने लगे, क्या हो गया ये, क्या रोड है ये है। अब मैंने देखा कोई चॉइस थी नहीं, रोड ही नहीं है तो उसको क्या बोलो कि रोड है। तो मैं देखने लगा कितना अच्छा स्नोफॉल है, पहाड़ कितना अच्छा है, क्या टेरेन है, क्या पहाड़ियां हैं। 18 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा। I am not okay, that is not okay, but that is okay, यानी जो चीज है करना ही है। इंडिया वापस आके मेरी पर्सनालिटी थी परफेक्शन वाली, टाइम कॉन्शियस, हर चीज टाइम पे, आधे घंटे में यहां से वहां जाना है, पहुंच जाना चाहिए। वहां फॉरेन में जैसे होता, 10 मिनट में मैं वहां आऊंगा, वो फ्लाइट लूंगा, वहां से चले जाऊंगा। यहां आया, बैठा गाड़ी में, रास्ते में बड़ी गड़बड़ हो रही है, ट्रैफिक जाम, स्कूटर, साइकिल, 3 लेन, गाय बैल सब घूम रहे हैं। पुलिस वाले का जो बैरिगेट लगा हुआ है वहां गाय मुस्कुरा रही है। 3, बहुत गुस्सा आता था, क्या लोगों में अकल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। 2 महीने निकल गए, कुछ नहीं हो रहा है, सब लोग वही कर रहे हैं, उनको तो मजा आ रहा है, गाय भी मुस्कुरा रही है, मैं ठीक हूं, तू ही अपनी एड्रिनल चला रहा है। मैंने कहा मुझे चेंज होना पड़ेगा, तो मैंने वो गीत डाला जो बचपन से अच्छा लगता आया, आई लव माई इंडिया, इंडिया इज गुड कंट्री, उसको अल्फा लेवल पे डाल दिया, उसकी फाइल बन गई यहां। मेडिटेशन का अर्थ ही है क्रिएटिंग योर ओन सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट डेफिनेशन। तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब फिर गया, फिर से फाइल खुली, लोगों में अकल नहीं, पुलिस नहीं, अब ये गीत बजने लगा, आह क्या ब्यूटीफुल कंट्री है, हमारी गाय और बैल में भी इतनी अकल है कि पुलिस का काम कर रही है, बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। अब 3 महीने हो गए ये एड्रिनल काम ही नहीं करता, मुझे मालूम है ये होगा ये, और यही लेह से हमने मनाली पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, उन लोगों ने बोला था ये सब आएंगे, मैंने प्रिपेयर था, होगा ही, तो उसको बड़ा एंजॉय करने लगे। तो ये हमारे ऊपर रहता है कि किस सिचुएशन में हम उस समय अपने को कहां मोड़ लें। इसीलिए कहा जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेजर मंत्र है योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। स्ट्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिचुएशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका एटीट्यूड क्या है उसके ऊपर इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक अच्छी कहानी बंद कर दो। एक अच्छी एटीट्यूड क्या होता है, एक व्यक्ति बहुत अमीर है, उसका एक लड़का है, उसने अपने सोचा कि इस लड़के को मैं एक दिन गरीब के यहां भेजूं जिससे इसको पता लग जाए गरीबी क्या होती है। तो उसने अपने बच्चे को रात को एक गरीब के यहां भेजा, रात भर वो बच्चा गरीब के यहां रहा और सुबह वापस आए। सुबह जब वापस आए तो बच्चे से पूछा तुझे पता लग गया होगा गरीबी क्या होती है। बच्चे ने कहा हमारे पास स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, उनके गांव में तो बहुत बड़ी नदी थी, हमारे पास 2 इम्पोर्टेड लाइट हैं, मैं जब आकाश के नीचे सोया तो चंद्रमा और बड़ी बड़ी स्टार तारे बड़ी बड़ी लाइटें थी, हमारे पास 2 कुत्ते हैं, उनके पास तो 20-25 कुत्ते गांव में घूम रहे थे, आज मुझे पता लगा हम कितने गरीब हैं। दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड डिटरमाइंड योर एल्टीट्यूड। आप जीवन में कहां जाना चाहते हैं वो आपके दृष्टिकोण के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हर सिचुएशन को कन्वर्ट करना सीख लें, और यही हमें स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पावर करता है। इम्पावरमेंट का अर्थ है आई एम द मास्टर ऑफ माय ओन लाइफ, आई एम द कंट्रोलर ऑफ माय ओन लाइफ, आई कैन क्रिएट माय थॉट्स इवन इन अ बैड सिचुएशन। एक रियल स्टोरी देते हैं कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड काम करता है। जर्नलिस्ट टेरी एंडरसन अमेरिका का था,
और उसको लेबनान में 7 साल बंद कर दिया जेल में विदाउट एनी रीजन। आप सोच सकते हो जेल में विदाउट एनी रीजन 1000 स्ट्रेस पॉइंट्स अगर लें स्ट्रेस के स्ट्रेस स्केल पे लें तो। इस व्यक्ति ने 7 साल के बाद निकलकर जब बाहर आया तो बहुत परफेक्ट निकला, हेल्दी निकला। लोगों ने पूछा आप 7 साल जेल में रहे विदाउट एनी रीजन, आपके ऊपर रोज टॉर्चर होता था, फिर भी आप कैसे निकले? बोला रोज वो व्यक्ति आता था मेरे को टॉर्चर करता था फिजिकली इमोशनली, अगर मैं रोज उस टॉर्चर को एक्सेप्ट करते जाता तो मेरी बॉडी डिटोरिएट होती और मैं साइकोलॉजिकल खत्म हो जाता। उसने सोचा मेरे हाथ में इस सिचुएशन में क्या है, भाग नहीं सकता, मेरे हाथ में मेरा सोच। तो उसने क्या किया, अपनी एक फाइल बना ली, मैं जब यहां से बाहर निकलूंगा जीवन में क्या क्या करूंगा, किताब लिखूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, वाइफ मेरा वेट कर रही है। ही क्रिएटेड हिज ओन फाइल इन हिज ओन कॉन्शियसनेस। अब क्या होता था, जैसे ही वो व्यक्ति आता था टॉर्चर करने, उसकी वो फाइल चालू हो जाती थी, मैं बाहर जा रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ये कर रहा हूं, जो मेंटली और इमोशनली फिजिकली टॉर्चर होता था उसका इफेक्ट आना खत्म हो गया, बिकॉज ही स्टॉप सिग्नल्स गोइंग टू टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे ऊपर रहता है कि ब्रेन के सिग्नल्स को हम कितना रिसीव करें, कितना भेजें, यही मेडिटेशन सिखाता है। इट इज ए आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। आपने अपनी कॉन्शियसनेस को डिटैच करके रख दिया, अब सिग्नल जा ही नहीं रहे हैं टॉर्चर के, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन पैदा ही नहीं होंगे और बॉडी हील होना चालू हो जाएगी। तो जब वो आते थे वो फाइल क्रिएट कर देता था, 7 साल बाद वैसे का वैसा वो निकला। दैट इज इन अवर हैंड, हम कैसे उसका यूज करें। एंड में मैं कहूंगा गॉड, GOD, गॉड का 3 मैनेजमेंट स्ट्रेस का, क्योंकि ये तो 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स हैं। जी का अर्थ है जनरेटर। हर दिन हर सुबह जब उठें अपने माइंड को जनरेट करें, कंप्यूटर को ऑन करें, क्योंकि मेजर प्रॉब्लम हम सभी के सामने आज है कि हम अपने कंप्यूटर को ऑन ही नहीं करते हैं, इतना एक्टिविटी कॉन्शियस हो गए हैं, उस विशियस साइकिल में फंस गए हैं। सुबह उठकर अपनी एक्सरसाइज जरूर करें, पैदल जरूर करें, ये हमारी फिजिकल फिटनेस है, क्योंकि जितना हमारा पैदल अच्छा होगा उतना मेरा हार्ट बीट, जिसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी परफॉर्मेंस, अच्छा होगा, क्योंकि जितना मैं हार्ट बीट को 110-120 तक ले जाऊंगा पैदल चलकर ब्रिस्क वॉक से, मेरा हार्ट सीख जाएगा कि 120 तक मैं जा सकता हूं। क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है, जब कभी भी स्ट्रेस आता है हार्ट बीट तेज हो जाता है, ट्रेन छूट रही है, भागा, 120 तक पहुंच गया, और अगर कभी मैंने इसकी एक्सरसाइज ही नहीं की तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसीलिए फिजिकल फिटनेस इज मस्ट, जैसे खाना मस्ट है, एक्सरसाइज भी मस्ट है, मेडिटेशन भी मस्ट है। तो एक्सरसाइज करिए, फिर आप बैठ जाइए, ऐसी जगह पे बैठिए जो आपको अच्छी लगे। उस समय मोबाइल, ईमेल सब बंद। ये 15 मिनट मेरे लिए हैं। अब आप अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करिए, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे। टुडे इज अ ब्यूटिफुल डे, टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज अ गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, लेट मी एंजॉय टुडे। आज मेरे को अपने लाइफ में क्या करना है, अपने धंधे में क्या करना है, प्रोफेशन में क्या करना है, आप प्लान करिए। दैट इज वाई मॉर्निंग इज ए प्लानिंग जनरेशन। फिर दिन में आप करिए ऑपरेटर, और जब घर से बाहर निकलिए आप अपने घर की फाइल घर छोड़ के आइए, घर की फाइल ऑफिस में मत ले जाइए। अब जो घर में हुआ उसको वहीं छोड़ा, मैं अब गाड़ी चला रहा हूं, स्कूटर चला रहा हूं। गाड़ी स्कूटर चलाने के पहले भी 1 सेकंड फिर से खड़े हो जाइए,
सांस अंदर और बाहर करिए और एक सेकंड अपने को बोलिए, आई एम पीसफुल, पीस इज विद इन मी, आई एम फुल ऑफ एनर्जी, आई एम मास्टर ऑफ माई ओन लाइफ। फिर गाड़ी चलाइए, नहीं तो क्या होता है, जैसे ही आप गाड़ी चलाते हैं, घर की फाइल लेके चलते हैं, तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव मैकेनिज्म है वो प्रॉब्लम में आता है। इसलिए छोड़ा, पीसफुल किया और आगे बढ़ा। फिर रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएंगे ट्रैफिक के, वो मैं रिलैक्स होके सामना करूंगा, क्योंकि आजकल ट्रैफिक पे भी लिख दिया है स्टॉप की जगह रिलैक्स। सबसे ज्यादा स्ट्रेस लोगों को ट्रैफिक पे आते हैं, तो उस समय भी रिलैक्स कर दिया, एक सेकंड किया, डिटैच किया, ब्रेक लगाई माइंड की, अपने कॉन्शियस में चले गए। फिर दिन में ऑपरेट किया, ऑपरेट किया यानी मैनेजमेंट, एक्शन एक्शन एक्ट, और बीच बीच में ब्रेक लगाए, जब कुछ काम नहीं है अपने चैम्बर में आ गए, मेरा अपना चैम्बर यहां है दो आंखों के बीच, अपने कमरे में बैठ गया और रिलैक्स किया। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं बैठकर रिलैक्स कर सकता हूं। अपने उस जगह चले जाइए जहां बचपन में जाते थे, सैंड स्नो सी हमेशा व्यक्ति को रिलैक्स करता है। सैंड में चले जाइए, बीच पे चले जाइए, स्नो पे चले जाइए, सी के पास चले जाइए और रिलैक्स करिए एक मिनट, अपनी सेंचुरी अपने आप क्रिएट करिए। फिर रात को डी, डी का अर्थ है डिलीट डिस्ट्रॉय, रात को इवैल्यूएशन, सुबह मैनेजमेंट प्लानिंग, दिन में मैनेजमेंट, रात को इवैल्यूएशन। जो चीज गलत हुई या किसी ने कुछ कहा, उस फाइल को छोड़ दो। अगर वो फाइलें यहां रखते जाएंगे तो हमारा कंप्यूटर हैवी हो जाएगा और इसीलिए नींद के प्रॉब्लम आते हैं। उस समय क्या करो, डिलीट डिस्ट्रॉय, जाने दो, करेक्ट वेयर यू वेंट रॉन्ग टुडे। रोज अगर हम एक छोटी गलती को ठीक करते जाएंगे तो हम परफेक्ट होते जाएंगे। जो जापानीज का प्रिंसिपल है TQM काइजान, हर दिन आप अपनी गलती को ठीक करिए, आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर यू आर डूइंग मिस्टेक, इमोशनल लेवल प्रोफेशनल लेवल, उसको ठीक किया और आगे बढ़े। और सोने के पहले एक एक्सरसाइज करिए, अपना राइट हैंड लीजिए और अपनी पीठ थपथपा दीजिए, आ ब्यूटीफुल, आप लोग कितने अच्छे सुंदर कलाकार हो। क्योंकि हर व्यक्ति को जो मैंने कहा क्या चाहिए, आखिर में कोई तो शाबाशी दे, भगवान, बॉस नहीं दे, वाइफ नहीं दे, हस्बैंड नहीं दे, बच्चे नहीं दे, तो मैं तो दे सकता हूं। रिवॉर्ड योर सेल्फ एवरी डे, जब आप रोज रिवॉर्ड करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। फ्रोजन शोल्डर स्पॉन्डोलाइटिस में दिखाने वाला था, समय नहीं था, कैसे हो जाता है, लिगामेंट में कैसे टाइटनेस आ जाती है, वो अगर हम रोज अपने को दे देते हैं दो तीन बार, ठीक है, ओके ओके आई एम ओके, नहीं तो दूसरों से हम मांगते हैं, मैं ठीक नहीं हूं, ठीक है, बच्चे को बोलो ठीक है, बार बार दो तो बच्चे में भी कॉन्फिडेंस आता। तो रात को रिवॉर्ड देके सो जाइए। और अभी हम एक अच्छा मेडिटेशन करेंगे, कैसे अपने को इम्पावर करना है। आराम से दोनों पांव खुला रखें, ब्रीद इन एंड आउट, सांस को अंदर बाहर करिए, एक्सहेल करिए, सब तरफ से ध्यान हटाकर चेतना शक्ति को दो आंखों के बीच फोकस करें, पूरे शरीर को हल्का छोड़ दें, मसल्स जॉइंट्स ऑल आर रिलैक्स, आई एम सिटिंग इन माय ओन चैम्बर बिटवीन टू आईब्रोज, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट फुल ऑफ एनर्जी, मैं अब अपने नेगेटिविटी डर रिलीज कर रहा हूं, सोप रहा हूं, लेट गो योर ऑल वरीज स्ट्रेस टेंशन गिव अवे टू गॉड सब कुछ सौंप दो Allow this energy to travel to all the parts of the body. Imagine करिए, feel करिए कि शरीर के सभी organs, cells, healing energy को ले रहे हैं. पूरा शरीर स्वस्थ है. Blood pressure normal है. Coronaries open है, blood sugar normal है, पूरा शरीर स्वस्थ है, शांति की शक्ति शरीर की सभी कोशिकाओं में जा रही है. शांति की शक्ति बॉडी के सभी सेल्स में ट्रेवल कर रही है.
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है. शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है.
वापस दो आंखों के बीच फोकस करें और विजुलाइज करें एक बेटर वर्ल्ड में जा रहे हैं. आज चल के ले चलूं एक बेटर वर्ल्ड जो मैंने अपने लाइफ का बनाया है वहां मैं जा रहा हूं. एक नई दुनिया का निर्माण मैं खुद कर रहा हूं. मेरा हर दिन एक नया दिन है. आज चल के तुझे
चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले. हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले. एक ऐसे गगन के तले
कम बैक टू नॉर्मल कॉन्शियस ब्रीद इन एंड आउट. Thank you very much. All the best to all of you, to your families, to your organizers.